ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। सरकार ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया है कि प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों का दल हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनयिक पहुंच बनाने की इस पहल के बारे में बात की है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद को लेकर भारत के रुख को स्पष्ट करना है। शिष्टमंडल के अगले सप्ताह जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। कल गुजरात के भुज वायुसेना अड्डे पर उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संघर्ष विराम का मतलब है भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
श्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और तीनों सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। नई दिल्ली में कल नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत को सेनाओं के तीनों अंगों, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि के साथ भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुमानित 6.4% की वृद्धि के साथ भारत की वर्ष 2026 तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 6.90 अरब डॉलर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 19.60 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.81 अरब डॉलर से अधिक हो गई। स्वर्ण भंडार 4.50 करोड़ डॉलर बढ़कर 86.33 करोड़ डॉलर हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी राम भद्राचार्य और उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश में करही और सगमा के बीच 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। पश्चिम मध्यम रेलवे जोन के तहत प्रस्तावित रेल लाइन 5.31 किलोमीटर लंबी होगी। रोमानिया के बुखारेस्ट में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने अलीराजीज फिरोजा और मैक्सिम वचियर लाग्रेव के साथ टाई ब्रेक के बाद जीत हासिल की। भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 90.23 मीटर की रिकॉर्ड दूरी तक भाला फेंकने में कामयाबी हासिल की। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।